आयत नंबर 95, यहां से अब अगली चंद आयतें बिल्कुल बगैर किसी इंटरप्शन के सुनने वाली हैं, क्योंकि ये आज के सबक का थीम है। क्रीम आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 95, ला यस्तविल काईदून मिनल मुमिनीन, नहीं बराबर अहले ईमान में से बैठ रहने वाले। यहाँ नंबर वन लगा लीजिए, अहले ईमान में से वो लोग जो जरूरत के वक्त घर बैठे रहते हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते। नंबर एक, और कौन नहीं, एक एग्जेप्शन है, इस पे टू लगाइएगा, गैर उलिदर, यानी बगैर किसी उजर के घर बैठने वाले बराबर नहीं हो सकते। किनके? वल मुजाहिदून, मुजाहिदों के। ये तीसरा गिरोह है। कहां निकलने की बातें? फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। ला यस्तवी, नहीं बराबर, दे विल नॉट बी इक्वल, इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों को एक ही किस्म का दर्जा मिल जाए, सब एक ही किस्म के हो जाएं, नहीं बराबर होते। कौन? अलकाईदून, बैठने वाले। बैठने वाले से मुराद क्या है? कि बैठने और लेटने से मुराद है? यहाँ बैठने वाले से मुराद हैं आराम तलब लोग। किसी ज़रूरत के वक्त जब इस्लाम को उनकी ज़रूरत थी तो उस वक़्त वो इस्लाम की मदद के लिए नहीं उठे, और ख़ास तौर पे जब खुद बंदे को इस्लाम की ज़रूरत हो तो वो इस्लाम ना सीखे, इल्म की ज़रूरत हो तो इल्म ना सीखे, कुरान के फहम की ज़रूरत हो तो वो ना ले। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते। आप एक काम कीजिए कि गैर उल दरर के लफ्ज़ के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लें, बहुत अच्छी तरह ये आयत समझ आएगी। क्योंकि जब ये आयत शुरू में नाजिल हुई थी ना, हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो ये आयत कैसे थी? ला यस्तविल काईदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, गैर उल दरर के लफ्ज़ नहीं थे, बस कह दिया कि जो बैठ जाने वाले हैं, बैठे रहते हैं, इजी गोइंग है, लेजी हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, इस्लाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो वल मुजाहिदून, और जिहाद करने वाले जान से माल से वो बराबर नहीं हो सकते। फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपनी जान और मालों से। किस तरह जिहाद किया? जान और माल से। एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं है अहले ईमान में से बैठ रहने वाले बग़ैर उजर के, और वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं अपनी जान और मालों के साथ, बल्कि फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काईदीन दरजा, अल्लाह ने फजीलत दी है इन मुजाहिदीन को। कौन से मुजाहिदीन को? मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम वालों को। किस पे दी है? अलल काईदीन दरजा, काईदीन पर, बैठ रहने वालों पर एक बड़े दर्जे की। मतलब क्या है कि अल्लाह ने फजीलत दी इन मुजाहिदों को जो अपनी जानों और मालों से जिहाद करते हैं, बैठ रहने वालों पर एक बहुत बड़े दर्जे की। भाई सीधी सी बात है, जितना गुड़ डाला उतनी मिठास है। यहाँ लफ्ज़ की दरजतन जो है वाहिद भी है, सिंगुलर है, और नकरा भी है, ठीक है, यानी दरजात नहीं है, आगे दरजात आना, इसलिए यहाँ थोड़ी बात कर रही हूँ ताकि वहां जाके आप इस लफ्ज़ को याद रखें, ठीक है। और नकिरा क्या है? इसकी शिद्दत को बयान करने के लिए। अब ये हुआ क्या, ये आयत एक खास मौके पे उतरी। हर आयत के पीछे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ये आयत गज़वे बदर में पीछे रह जाने वाले लोगों के लिए उतरी, बाज़ कहते हैं गज़वे तबूक के लिए। लेकिन गज़वे तबूक तो बहुत दूर की बात थी ना, जब इस सूरत के इर्द गिर्द का माहौल देखें तो यहाँ ये लगता है कि बदर में शामिल ना होने वाले लोग, जिन्होंने इसको सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं थी, फ़र्ज नहीं था कि ज़रूर करो, आपको करना चाहें तो कर लीजिए, तो कुछ लोग उस कॉल पे निकल पड़े, 313 बन गए, बदरी सहाबी बन गए। दुनिया में आज के बाद कोई और नेकी ना भी करो तो जन्नती कहलाए, कोई गुनाह भी कर लो तो तुम्हें कोई उस गुनाह पे पकड़ नहीं होगी, असहाबुल बदर कहलाए। मिल गया ना उनको मौका। अब जिन्होंने सीरियस ना लिया इस मौके को, दे लूज द गेम, दे लूज द चांस। ये कैफियत है कि बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं कि फोर्स्ड नेकियां करवाई जाए, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऑप्शन दे देता है। देखिए ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं आप में से किसी का नाम लेके कहूँ कि लेट्स सी, अगर मैं कहूँ कि फारिया आप उठिए और नीचे से एक कुर्सी उठा कर लाए, अब फारिया के लिए क्या होना चाहिए? इस बात को सुनकर लाजिम हो गया, फितरी सी बात है कि जाए और ले आए। और अगर मैं ये कहूँ कि आप में से कोई एक कुर्सी ले आए, तो ये ऑप्शन थी ना, तो जिसको मौका मिला वो फौरन उठ के भाग जाएगा। तो बास नेकियां बंदे के सर पे नहीं मुसल्लत की जाती, करो जान पे दी है, क्या करें, मुश्किल है, नो नहीं कर सकते, नहीं वॉलंटियर फॉर्म फिल कर दिया है, नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, फंस बस आ गए। याद रखिए, अल्लाह से ज्यादा गयूर कोई नहीं है। मुझे पता चल जाए कि एक वक्त की रोटी आपने मेरे लिए बुरे दिल से बनाई है, तो मैं नहीं खाऊंगी ना, और खा भी लिया और पता चल जाएगा तो खुशी नहीं होगी। तो अल्लाह को मेरे और आपके उस काम की क्या जरूरत है जो मैं बोझल दिल से कर रही हूँ, अंदर से बुड़बुड़ करते हुए कर रही हूँ, क्या मुसीबत है फिर ये मैं ही करूँ, हमेशा करूँ, इनके तो काम ही नहीं खत्म होने, ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि लोग दो किस्म के होते हैं। यहाँ अब एक बड़ी खूबसूरत सी इंसानों की बांट है। पहली बात तो ये जो गैर औले जरर है ना, इसको समझ लीजिए कि जब ये आयत नाजिल हुई, बरा बिन आसिब सहाबी हैं, बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इसमें गैर औले जरर के लफ्ज नहीं थे, बस सिर्फ सिंपल अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों का जिक्र कर दिया कि जो घर बैठे रहते हैं और जो आ जाते हैं, का ये दोनों बराबर नहीं है अल्लाह के रस्तों में। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम यानी इब्ने मकतूम कहते हैं, नबीना सहाबी थे ये अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कह दिया कि जो घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं, दोनों बराबर नहीं है अजर के एतबार से, तो मैं क्या करूं, मैं तो नबीना हूं, क्या फिर मेरा दर्जा कम हो गया? और आप वाकयात पढ़ के देखिए, जंगों में ये अल्लाह के नबी के पास आके रोते थे, कहते थे मुझे साथ लेके जाएं। अब एक नबीना शख्स है, आप उसको लेके जाएंगे भी तो क्या करेंगे, बाज दफा वो खुद दूसरों के ऊपर एक बोझ बनता है। तो ये कहा करते थे कि आप मुझे ले जाइए, मैं झंडा पकड़ के खड़ा रहूंगा, उसके लिए तो आंखों की जरूरत नहीं है ना, और ये मैं वादा करता हूं कि मैं उस झंडे को गिरने नहीं दूंगा, अपने हाथ कटवा लूंगा, अपनी बाजू कटवा लूंगा, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। और गए कुछ जंगों में, इसलिए मूमन देखिए कि जब ये नहीं जाते थे तो अल्लाह के नबी इनको क्या काम देके जाते थे, आपको पता नहीं, पता होगा ना, सीरत नहीं पड़ी अभी। नबी सल्लम जब जंग के लिए मदीना से निकलते तो अपने पीछे कायम मुकाम कह लीजिए या अपना नायब कह लीजिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव इब्ने मकतूम को छोड़ के जाते। हमने क्या करनी है ये आंखें, अगर ये आंखें अल्लाह के रास्ते में लगने को तैयार नहीं, वो आंखों के नबीना थे, दिल के खुले थे। सूरह तौहा में अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों, आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। दिल अंधा हो जाता है ना तो बंदा नेकियों की कदर नहीं करता, खुदा की कसम। वो आंखें मांगी अल्लाह से जो हमसे नेकियों के काम करवाए और हमें दिखाए, वो दिल मांगिए जिसके अंदर रगबत हो। इंसान दो ही किस्म के होते हैं, अब यहां समझ लीजिए इंसानों की दो किस्में। देखिए आप पीछे कितनी आयतें और आखिरी सबक भी जब पारे का पढ़ेंगे तो आप कांपेंगे उस दिन। मुनाफिकों की बातें पूरी सूरत निसा, मुनाफिक 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 है। आप कह लीजिए कि मुनाफिक कौन है, कीड़ा लगे हुए फल। इमेजिनेशन में लाइए कि फल है, किसी भी दुकान पे बिक रहा है। अब फल अमूमन कितने होते हैं, एक तो वह जो दरख्त पे कीड़ा लग गया या नीचे गिरे तो गल गए, किसी जानवर ने टुक दिया उसको, कुछ भी कह ले, उसको क्या किया जाता है, वहां से पकड़कर डस्टबिन, रिजेक्टेड। पहली किस्म के लोग जो है ना, जो मुनाफिक हैं, वो तो हैं कीड़े लगे हुए मुनाफिक हैं, उनको तो अल्लाह सीधा पकड़ के जहन्नुम में रिजेक्ट करके फेंक देगा, उनका तो किस्सा पाक। अब इसके बाद चलिए दूसरी किस्म, मोमिन। मोमिन फिर दो किस्म के होते हैं। आज मैंने और आपने अपनी किस्म पहचाननी है, अपनी औकात पहचाननी है, किस कहले पर क्यों, कहते हैं ना मैं खानदानी हूं कि नहीं, मैं किस नस्ल से ताल्लुक रखती हूँ। कितना लोगों को ये नाम प्यारे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि ईमान वाला होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि सब ईमान वाले बराबर हों, बल्कि ईमान वाले फिर दो किस्मों के होते हैं। एक वो हैं ईमान वाले पर क्वालिटी अच्छी कोई नहीं है उनकी, लेस क्वालिटी, कमजोर, बाज़ के फल छोटा साइज का होता है, बाज़ में बीज ज्यादा होते हैं, बाज़ का छिलका मोटा होता है। इसी तरह बाज़ मोमिन कौन से होते हैं, जो सिर्फ फराइज की सतह पे जीते हैं। ये जुमला लिख लीजिए, وہ مومن جو صرف فرائض کی سطح پہ جئیں، نماز پڑھ لی نماز کے وقت میں، روزہ رکھ لیا روزے کے دنوں میں، حج کر لیا اور اس کے بعد گھر کے کام کرتے رہے، خدمت خلق کے نام پہ جو مرضی کر لیں کرا لیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کون ہیں؟ القائدون. وہ دین کے کام سے تو قائدون ہیں، دنیا کے کام میں وہ سارے اون ہیں، سب سے تیز بھاگنے والے، بھاگتے آگے کیونکہ دنیا ملتی ہے، تعریف ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. بعض دفعہ ہم خدمت لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سکون خود کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت ہے، مزہ آتا ہے. دنیا میں بھی ہم لوگوں کی صرف وہی مدد کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جس میں ہمیں مزہ نہ آئے اس کو نہیں ہے. تو یہ پہلا گروہ، اس کو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں قائدون، بیٹھ رہنے والے. اللہ کہتے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدے سب سے اللہ کے اچھے ہیں، مراد یہ کہ ان کو بھی جنت ملے گی. مت سوچئے کہ اگر آج آپ قرآن پڑھنے اور ایک مشکل والی زندگی کا سفر کر بیٹھے ہیں تو جو آپ کی دوستیں اب نہیں آ رہی، جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو بس پانچ وقت کی نماز روزہ پڑھتی ہیں، علم کا شوق نہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گی؟ وہ بھی جائیں گی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو وعدہ دیا ہے، لیکن وہ درجے نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے ان کے اندر جو کہ دوسروں میں ہونی چاہیے. دیکھیے دنیا میں کیا ہر سویٹر ایک ہی برانڈ کا ہوتا ہے، ہر برتن ایک ہی کوالٹی کا ہوتا ہے، ایک ڈالر شاپ ہے اور ایک کسی مال کے اندر بہت پوش دکان ہے جس میں ایک ایک پلیٹ جو ہے وہ 10-10, 15-15 pounds کی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ پلیٹ وہ بھی پلیٹ، یہ بھی. ایک سویٹر ریڈی سے مل جاتا ہے، ایک سویٹر جا کے بڑے مال میں سے ایک برانڈیڈ جگہ سے لے کے آتے ہیں، یہی فرق ہے. قائدون کون ہے؟ تھرڈ کلاس مسلمان، لیسٹ مسلم. شکر ہے اللہ نے ان کو مسلمان تو بنا دیا، شکر کرے اتنی جگہ پہ رہے. یہ وہ ہوتے ہیں جو رخصتوں کی سطح پہ جیتے ہیں. ہاں ہاں اس کی رخصت ہے، یس یہ فرض نہیں ہے، نہیں نہیں یہ ضروری نہیں، کر لو کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کر لو نہ کر لو، بس فرض کے اوپر جیتے ہیں. بظاہر ان کی زندگی میں آپ کو چینج کوئی نہیں دکھتا، لیکن نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک دوسری قسم کے مومن ہوتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان، برانڈیڈ مسلم، لکھ لیجئے برانڈیڈ مسلمین، کہ جو کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہی کوئی نہیں، ان کو یہاں اللہ کرے المجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم، جان اور مال دونوں کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں. کیونکہ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی صورت میں. کیا؟ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجے بھی ہوں گے اور مغفرت و رحمت بھی ہوگی. یہ سب کیوں ملا؟ مجاہدوں کو اللہ کے راستے میں جان مال وقت صحت لگانے والوں کو یہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا بخشا اور کیا مہربانی کہ اتنے نیکی کے کام کر کے بھی انہوں نے جنت میں کوئی نہیں تھا جانا اگر اللہ ان کے گناہ معاف نہ کر دیتا. اللہ نے غفور ہونے کے ناطے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جو نیکیوں کے کاموں کے باوجود ان سے ہو جاتے تھے. کیا خیال ہے دین کا کام کرنے والے یا دین سیکھنے سکھانے والے سارے سن فری ہوتے ہیں یا مسٹیک پروف ہوتے ہیں؟ بہت گناہ کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، پر اللہ کو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے جاؤ میں غفور ہوں، میں تمہارے معاف کرتا ہوں. تم نے کوشش تو کی، ٹوٹے پھوٹے تھے، نہیں اچھے کام کر سکتے تھے، شکر کرو کرتے تو تھے، لہٰذا میں تمہیں اس میں چھوڑ دیتا ہوں اور تم بالکل فکر نہیں کرو، تمہیں کون کہتا ہے؟ بس میں نے تو دیکھنا ہی یہ تھا کہ تم کس حد تک یہ کام کر لیتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ فضیلت دے کر تمہیں ان کے اوپر درجے دے دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی ہے قدردان کہ جو بندے کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی اتنی بڑی قدر کرے کہ اس بندے کو اپنی غلطیاں یاد آ رہی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے مٹی پاؤ، چھڈو، کچھ نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو، تم کرنے والوں میں تھے، تم قائدون تو نہیں تھے نا. دیکھیے جب بندہ دین کی طرف آتا ہے اور کچھ اور ہی پھر آتا ہے نا، تو پھر ایک گلٹ ضرور لگ جاتا ہے کہ حق نہیں ادا کر رہی. بس آج آپ سیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائدون سے بچا لیا نا. ترجمہ بھی دیکھ لے تو بیٹھ رہنے والوں کی وجہ سے، اب کوئی چل کے آیا، کوئی گاڑیوں میں آیا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے نا گھروں میں. اب جب آپ نکل آئے تو پہلا آنر تو آپ کو مل گیا. اس پہ دو نفل پڑھیے جا کے کہ اللہ آج گھر نہیں بیٹھی ہوئی، آج یہاں آ کے سن رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری یہ نعمت کبھی نہ چھیننا. और ये नेमत पता कब चलती है? जब यहाँ आके बैठते हैं। कसम से कह सकती हूँ कि अगर आज आप यहाँ ना होते, आपको कभी इस नेमत की कदर नहीं होनी थी। गिल्ट तो होता है थोड़ा सा, वो भी शुरू में ही होता है, 2-4 दिन। उसके बाद आप कहते, छोड़ो, मैं कुछ ज्यादा ही हो गई थी, कुछ एक्सट्रीम पे चली गई थी, मैं ये क्या करूं, मेरे साथ ऐसा मामला होगा, दिस एंड दैट। और आप देखिए, जो घर बैठते हैं ना, वो मजबूरियों के नाम पे बैठते हैं। आपको क्या पता हमारी क्या मजबूरी है, आपको क्या पता कितना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आओ जरा देखो, अगली आज साथ मिला है, फिर इस सारे पे हम इकट्ठी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि चलो तुम मजबूरियों के नाम पे अल्लाह के रास्ते के काम छोड़ देते हो, तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तुमने अल्लाह से एक वादा लिया था, अल्लाह से किया था, नहीं पूरा किया, तो आओ जरा अपनी मौत को सोचो। आयत नंबर 97, इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं, कौन से वो लोग थे? ज़ालिमी अनफुसिहिम, जो जुल्म करने वाले थे अपने नफ्सों पे। ये जो लफ्ज है ना ज़ालिमी, असल में ये लफ्ज क्या था? ज़ालिमीन, आखिर की नून गिर गई, ये गिर जाती होती है कभी, यानी वो लोग जो जिंदगी भर अपने ऊपर जुल्म करते रहते थे, जब उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं, कालू कहते हैं। लिखिए, कालू किसका कलाम है? फरिश्तों का। मौत के फरिश्ते, मलकुल मौत उनको कहते हैं, और उनके साथी, वो उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कालू फीमा कुंतुम, सुनाओ मियाँ किस हाल में थे, सुनाओ भाई क्या हालात थे, कैसी थी, क्या तुम्हारी जिंदगी थी, तुमने ईमान का दावा तो किया था लेकिन हिजरत का हुक्म आया तो हिजरत नहीं की, जिहाद का हुक्म आया तो जिहाद नहीं किया, माल देने का वक्त आया तुमने माल बचा लिया, वक्त देने का वक्त आया बचा लिया, सुनाओ भाई क्या हो गया, तुम क्यों नहीं थे तकाजे पूरे करते दीन के? तो कालू, वो कहेंगे, ये किसका कालू है? ज़ालिमीन अनफुसहुम, कायदून, बैठ रहने वाले, पीछे रहने वाले, जो फराइज से ऊपर उठना ही नहीं चाहते थे, और जब कभी मुजाहिद बनना चाहते थे तो उनके इर्द गिर्द वाले उनको नहीं बनने देते थे, क्योंकि अभी वो कोई नहीं बने हुए, और वो चूंकि कायदून है तो वो आपको मुजाहिद बनता देख नहीं सकते, क्योंकि गिल्ट बहुत होगी, तो लिहाजा ये कहेंगे, कालू कुन्ना मुस्तदफीना फिल अर्ध, हम बड़े मजबूर और कमजोर बना दिए गए थे जमीन में, बहुत मजबूर थे, हम हराम ना खाते तो क्या करते, मियाँ ही ऐसे मिले, क्या करते, देखो फिर माशरे में जीना भी तो था, आपको क्या पता मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। मुस्तदफीन, कमजोर थे, किसके हाथों कमजोर बने हुए थे भला? लोगों के खौफ से। फिर सोसाइटी में जीना भी तो था, हमारी इतनी मजबूरियां भी तो फिर होती हैं, फिर बच्चों का भी देखे साथ होता है, फिर सेहत भी जरा कमजोर ही रहती है, फिर आपको पता है पाकिस्तान भी कई मसाइल चलते रहते हैं, सब चीजों को लेना है, यानी वो अपनी मजबूरियों की लिस्ट गिनाने लगेंगे, किसको? फरिश्तों को, क्योंकि दुनिया में भी आदत थी। कभी एक क्राइटेरियन ना भूलिएगा, जो बंदा कायदून में होता है ना, वो जरा सी बात होगा ना तो उजर की एक लंबी लिस्ट देगा, और बस दफा मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह मजबूरन कायदून बनने पे मजबूर कर दिए जाते हैं। वो बनना तो मुजाहिद चाहते थे, क्योंकि घरों में बैठने ले हर एक बराबर नहीं होते, कई वाकई रोक लिए जाते हैं, और आप उनसे जरा पूछें, सुनाए बहन क्या बात है, आप कई दिन से दिख नहीं रही, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, छन 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 आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, मैं क्या बताऊं, मैं किस पल जीती हूं, तुम्हें क्या पता मुझे कुछ चैन थोड़ी आ रहा है घर में। वो कभी अपनी ये लॉजिक्स देना, एक्चुअली ये आपको क्या बताऊं, वो तो बस इस पर रोने ही लग जाते हैं, रोने ही लग जाते हैं कि क्या बताऊं, मैं तो इतनी मुस्तदफ बन चुकी हूं, मैं बहुत कमजोर थी। अब ये फरिश्तों को देख के, ये झूठे उजर हैं, वी वाज बीइंग फोर्स्ड, हमें मजबूर कर दिया गया, इजाजत नहीं थी, ये नहीं था, मजबूरी थी, फिर ये था, जॉब भी तो करनी पड़ती है, फिर बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे, फिर उनके रिश्ते नहीं करने, फिर इतना आगे चले जाएंगे दीन पे तो फिर तो हम तन्हा रहेंगे, आगे बात हो रही है अभी तन्हाई की। फरिश्तों का जवाब सुनिए, कालू, वो कहेंगे, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासियतन, क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी? फतुहाजिरू फीहा, कि तुम उसमें हिजरत कर जाते, किसने कहा था इस माहौल में रहो, क्यों तुम इतने सरेंडर्ड बन के रहे? तुम अपने आप को क्यों उनकी गलत चीजों पे भी रखा तुमने? तुम उस माहौल से हिजरत करते, उस बुरी आदत से पीछे हो जाते, ये तुम्हारा उजर झूठा है। लिहाजा फौलाई कमा वाहुम जहन्नम, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना और मावा जहन्नम है। बसात मसीरा, हाँ ये बहुत बुरी जगह है ठहरने की। यानी ये तो वो लोग थे कि जो झूठे बहानेबाज थे, कोई नहीं था उनका उजर इतना, वो समझते थे हम मजबूर हैं, मजबूर कोई नहीं थे, जो मनवाना होता था मनवा लेते हैं। क्या हम औरतों को नहीं पता कि शोहरों से कैसे मनवाते हैं? और क्या हमें नहीं पता कि ससुराल वालों से डील कैसे करते हैं? और क्या हमने दुनिया को मैनेज नहीं किया हुआ बच्चों के साथ? और क्या हमारे शोहर को इतने जालिम है कि हमें अल्लाह के दीन से रोके? सब आता था, लेकिन दीन के मामले में खुशी खुशी मजबूर होते हैं ताकि कह सके अल्लाह फुला रोकता था। ये मियाँ की वजह से प्लकिंग करती थी, ये मियाँ की वजह से पर्दा छोड़ा, ये मियाँ नहीं सर पे दुपट्टा लेने देते। वल्लाही औरतों का तो मुझे लगता है कि एक ही मिजाज है अमूमी तौर पे, कि वो अपने शौहर या अपने ससुराल को बुनियाद बना के जन्नत में जाना चाहती हैं। मैं नहीं समझती कि कोई मर्द इतना बेखौफ हो, और अगर ऐसे बेखौफ मर्द के साथ आप वैसे ही जी रही हैं जो आपको दीन के तकाजों से रोके, तो वो तो फिर आपकी बात उससे बहुत पीछे ख़त्म हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि दीन ही के नाम पे हर लड़ाई होती है? देखिए, दीन के नाम पे शौहर बीवी की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उसके पीछे दुनियावी मामलात में कोई कमी बेशी होती है। जो बीवियाँ दुनियावी एतबार से, अखलाक के एतबार से, खिदमत के एतबार से, रिस्पेक्ट के एतबार से, इंटिमेसी और मोहब्बत के एतबार से अपने शोहरों का दिल जीत लेती हैं ना, उनके मर्द कभी नहीं रोकेंगे। और अगर फिर भी ये करके भी कोई रोकता है तो फिर कोई कबीरा गुना बीच में होगा, फिर तो उस मर्द से जान छुड़ाइए, क्योंकि उसके जरासीम तो आपको भी लग जाएंगे, कल आपके बच्चों को भी लगेंगे। ये बहुत संजीदा मामला है ऐसे वक्तों में, जब ये हालात हो जाए कि जब एक बंदा दूसरे के नाम पर इस तरह गुना करे और उसको भी गुनाहगार करे। आप सोचिए ना, जब आप किसी के गुनाह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब किसी की मजबूरी और उसकी पाबंदी को कबूल कर लिया, आप तो बन गए मजलूम, तो अगले को आपने जालिम नहीं बनाया। और हदीस में आता है कि ना जालिम बनो ना मजलूम बनो। कहा अल्लाह के नबी, जालिम तो हम समझते ना बनो, मजलूम क्यों ना बनो? कहा जालिम को रोको। बस जब हम सब्र के नाम पे, अच्छा मैं तो सब्र ही करूँगी, और सास को और मौका देते हैं ताने देने का, गालियाँ देने का। आप जन्नत में चली जाएंगी गालियाँ खा के सब्र करके, वो औरत गालियाँ दे के कहाँ पहुँचेगी? एक दिन सास का प्यार से हाथ पकड़ के कह दे, अम्मी जी मेरा दिल कटता है, अम्मी जी आप ऐसे क्यों करती हैं? उस बेचारी को भी समझ आ जाएगी, वो कहेगी अच्छा बेटा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरा भी दिल मेरी तरह ही है। ठीक हो जाएंगे लोग, वल्लाही हमें नहीं पता होता, हमें पब्लिक डीलिंग आती कोई नहीं। ह्यूमन रिलेशंस को तो हम क्या निभाएंगे, हम तो अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं निभा सकते। तो ऐसे तमाम लोग जो मजबूरियों का नाम लेकर अल्लाह के रस्तों से रुके, अब यहाँ चूंकि ख़ास नारियों में हिजरत की बातें हैं, तो हिजरत के कई दर्जे हैं। गुनाहों से हिजरत, हराम काम से हिजरत, हराम जगह पे जाने से हिजरत, हराम देखने से हिजरत। असल हिजरत तो वतन छोड़ना है ना, वो तो कभी कोई करता है? कभी आज तक मुझे और आपको हिजरत का ऐसा कोई मौका मिला? हमारे सारे ख़ानदान में कितनों ने हिजरत की? चले पाकिस्तान बना तो कुछ ने इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर ली। हमें तो ये पिछली पूरी जनरेशन को एक दफ़ा भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला। ये हिजरतें छोटी से छोटी होती हैं, और बेहतरीन हिजरत जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया वो क्या है कि बेहतरीन हिजरत क्या है कि बंदा हर उस चीज़ को छोड़ दे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। आँखों की हिजरत हराम देखने से, कानों की हिजरत हराम सुनने से, ज़ुबान की हिजरत हराम बोलने से, और इसी तरह जिस्म के एक एक उज़्व की मोहब्बत। आपका गुनाहों में दिल लगता है, आप छोड़िए अल्लाह के लिए। देखिए पाँच पारे पढ़ ली आपने, अगर अभी आपकी निगाहें हराम देखने से नहीं रुकती ना, तो दिल पे मोहर लग जाएगी अगर आपने तौबा ना की। अभी भी आपके लब हराम के बोसे लें और हराम की बातें ज़ुबान से निकलें और हाथों से हराम की चैटिंग्स हों, तो फिर याद रखिए कि उस दिल में कुरान कोई नहीं ठहरता। ऊपर से डालते जाएं नीचे छेद हो, कभी एक कतरा भी पानी का नहीं उस बर्तन में ठहरता। तो जब दिलों में गुनाहों के छेद आने लगते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला का मामला बंदे के साथ इंतकामी हो जाता है। अब क्या सारे ही ऐसे? का नहीं। आयत 98 देखिए, दीन का हुसन देखिए, जहां एक एक्सट्रीम आई आगे साथ ही आयत 98, इल्ल मुस्तादफीन मिन अर्रिजाल वन निसाई वल विल्दान, हाँ सिवाय इन मर्दों औरतों और बच्चों के जिनको वाकई दबा लिया गया। हर सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होते हैं। अब देखिए इसमें मर्द भी हैं, सिर्फ औरतें नहीं मजबूर होती, मर्द भी बड़े मजबूर होते हैं। बस बीवियां मजबूर कर देती हैं हराम कमाने पे। तो यहाँ हकीकी मजबूरों की बात है। और अगर इसको ख़ास टैक्स में लें तो हज़रत अब्बास कहते हैं ये मैं और मेरी माँ का जिक्र है। ये मुसलमान हो गए थे, इनकी माँ उम्मुल फजल थी, दोनों मुसलमान हो गई थी। हज़रत अब्बास अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हालांकि अल्लाह के नबी के चचा थे। तो कहते हैं जब हिजरत की लोगों ने तो मैं बच्चा था, बच्चा होने के नाते से मैं सफ़र नहीं कर सकता था, माँ मेरी औरत थी और अकेली इतनी दूर सफ़र कर नहीं सकती थी और करने कौन देता, तो लिहाजा ये मेरी और मेरी माँ की बात हो रही है कि जो वाकई मजबूर कर दिए गए, जिनको रोक दिया गया, ला यस्ततीउना हीलतन, ना तो वो कोई तदबीर कर सकते हैं, वला यहतदूना सबीला, और ना वो रास्ता ही जानते हैं, यानी कोई उनके पास मीन्स ही नहीं, गाड़ी कोई नहीं, घोड़ा कोई नहीं, कोई सवारी नहीं है, रास्ता उनको पता कोई नहीं, करे क्या, देर इज नो। ये है वो औरत के जिसके पास कोई बचने की गुंजाइश ही नहीं है, है मियाँ का काम हराम का, अब क्या करे, कूते लमुत, उसके सामने बैठ के नमक मर्चों के साथ रोटी खाए आदि, डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपको शक है ना कि आपका मर्द हराम कमाता है और पीछे है कोई नहीं, माँ पूछ नहीं सकती, बाप है कोई नहीं, भाई पूछते नहीं, किधर जाऊंगी बच्चों को लेके, उसी के घर में रहे, कोई ज़रूरत नहीं आपको मुर्ग मुसल्लम और चटखारे लेने की, वो जो मर्जी खाए उसको पका दें अपने बच्चों और अपने लिए, बस वो रख लीजिए कि जिससे आप उसको भी एहसास हो कि ये इसने खाना नहीं है। ज़्यादा दिन ये प्रेशर लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कहते हैं गुनाहों पर चटखारे भी लें और फिर हमारी बातें भी मानी जाएँ और फरिश्ते भी आ जाएँ, कोई नहीं आएंगे फरिश्ते, ला यस्ततीउ ना हीला, है ही कोई नहीं, हीलो हुज्जत है ही कोई नहीं। अल्लाह ने सबको एग्जेम्प्ट कर दिया, अल्लाह को पता है कौन कितना मजबूर है। मैं और आप यहाँ कुर्सी में सजा के कैसे ही अब तो फतवे दे सकते हैं कि फलां औरत घर छोड़ दे, फलां बच्चे ले दे, हर बंदा खुद सोचे। हाँ इतनी क्राह और इतनी मजबूरियों में जिनके पास कोई मीन्स नहीं, उनके लिए क्या हुक्म है? आयत 99, फौलाइका सल्लल्लाहु याफवनहु, बईद नहीं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। यकीन कोई नहीं है, असा परहैप्स माइट बी मे बी मे नॉट, हो भी सकता है हो नहीं सकता, उम्मीद दिलाई है यकीन नहीं दिलाया। देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, इस पर एक पूरा मुफस्सरीन का बाब है, मुहद्दिसीन ने हदीस में इस बारे में बाब बांधे हैं कि जिसको इकराह पे मजबूर कर दिया जाए, यानी गुनाह पे मजबूर कर दिया जाए, क्या उसको गुनाह होता, बात समझ रहे? मिसाल यह है कि अल्लाह ना करे कोई शख्स आए और गन पॉइंट पे हमें कहे कि शराब का ये घूंट पियो नहीं तो गोली मार दूंगा, अब कोई पी ले, मिसाल दे रही हूँ सिंपल समझने के लिए, तो क्या उस शराब के घूंट का उस पीने वाले को गुनाह होगा? आप कहते नहीं होगा, अल्लाह कहता होगा, बट असल्लाहु याफ़ुअन्हु, मजबूरियों में जो गुनाह इंसान करता है वो गुनाह तो है, ये तो 100% गुनाह, बट उस गुनाह के अंदर अल्लाह का गजब नहीं शामिल कि उसको पता है कि मेरा बंदा मजबूर है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअ, तो अल्लाह कहते हैं मैं माफ़ कर दूंगा। और याद रखिए क़यामत के दिन यही गुनाह माफ़ होने हैं जिसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट है। जिन चीज़ों पे आज हम बड़ा रोते धोते हैं ना, हाय फलां बड़ी मजबूर करता है, बड़ी पाबंदी लगाता है, ये और वो करता है, कल देखिएगा उसी पर मैंने और आपने बचना है। कोई हम पे दीन के काम में मुश्किलात हों, कल इसी की सूरत में अल्लाह ने कहना है फरिश्तों जाने दो ना, इतने तो इसके ऊपर हालात तंग थे फिर भी करती रही, गलत हुआ ठीक है जाओ मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। वकान अल्लाह वफूवन गफूरा, अल्लाह ताला वाकई बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह अकबर। अब देखिए इसी सूरत की आयत 75 में हम पढ़ चुके थे ना कि जाओ उन लोगों को निकालो जो बस्तियों में फंसे हुए हैं, जो तुम्हें बुलाते हैं पुकारते हैं, तुम उनकी मदद करो। उनको तो फिर बुलाने के लिए अल्लाह के नबी ने लोग भी भेजे। मरसद बिन मरसद नाम के एक सहाबी का वाक्या कई दफ़ा सुनाती हूँ वाक्यात में, कि उनको सिर्फ इस काम पे अल्लाह के नबी मदीना से मक्का भेजते थे कि जाओ और वहाँ से कैदियों को आज़ाद करके लाओ। और एक रात जब गए तो वहाँ दौरे जाहिलियत की महबूबा मिल गई, महबूबा थी, गर्लफ्रेंड थी, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। जब उसने देखा तो उसने कहने की कम अहलम वसहलन जा मरसद बेतिन दन लैलन, आओ वेलकम वेलकम स्टे नाइट विद मी, मेरे साथ स्लीप ओवर करो। कहेंगे चली जाओ यहाँ से, इस्लाम ने जिना को हराम किया। जब इतनी कोल्ड बात की तो उसने शोर मचा दिया, अब शहर वालों ये तुम्हारे कैदी लेके जा रहा है। नफ्स परस्ती की मोहब्बतें तो ऐसी होती हैं ना। तो आप देखिए कि फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को निकलवाने की कोशिश की अपनी पुश्त पे, कैदियों को और हैंडीकैप लोगों को, ये मक्का से मदीना लेके जाते होते थे और वहां से निकाल के लेते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऐसे लोगों के पीछे ना पढ़ो। अब देखिए कैसी इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब हमारा खून तो गर्म है ना इस वक्त। हम अपनी जिंदगी किस लेवल की जीना चाहते हैं ये हम खुद डिसाइड करेंगे। मैं अपने लिए सोचती हूँ, आपको तो अल्लाह ताला लंबी उम्र दें, सबको ही दें, हम सबको। मुझे ऐसे लगता है कि अब तो ये तो नहीं सोच सकते कि हम कोई अब नए सिरे से जिंदगियां शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रही है, अल्लाह ने जो हमारे लिए डिसाइड करना था, शादियां हो गई, माँ बाप मौजूद हैं, जहां जहां ठिकाने लगना था लगे, बच्चे होने थे तो हो गए, स्टेबल लाइफ है ना हम सबकी इस वक्त। अब किसकी फिक्र होनी चाहिए? अगली जिंदगी जो चाहो देखने थे देख लिए, कपड़े पहन लिए, खा लिया, पी लिया, लाड हो गए, सब हो गए, क्या अब भी हमारे अंदर संजीदगी नहीं आनी चाहिए? फिर हर ईद पे बच्चों की तरह ईद का जोड़ा बनाने के लिए बाजारों में घूमेंगे, हर नई शादी पे अब फिर हम बाजारों में जाएंगे, क्या हम लड्डू हैं, हम फुटबॉल है कि लोग हमें खेलें और हम खिलौना बने उनके हाथों में? आज सांस की डोरी बंद हो सकती है, ये धोखा अगर कोई कहे नहीं, उम्र बढ़ती जाए और मौत का वक्त कोई नहीं करीब आया। जितनी उम्र लंबी होती है मौत की कुर्बत है। देखिए मर तो बच्चे भी जाते हैं, पैदा होता भी मर जाता है बच्चा, लेकिन जब उम्र बड़ी हो जाए, जब आपकी जिंदगी से आपने अच्छे बुरे दिन देख लिए जिंदगी के, फिर ये सोचे नहीं अभी मैं जीऊंगा, अभी मैं और जीऊंगी, तो ये धोखा है। अब तो हम सबको डिसाइड करना है कब तक सिर्फ फराइज की सतह पे जीऊंगी और कब उठूंगी अल्लाह के रास्ते में एक अजम की जिंदगी। कायदून कौन थे? फराइज वाले। और मुजाहिदून कौन है? अजीमत वाले, अजम, मिशन की जिंदगी, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। और आप देखिए कि मुजाहिद की जिंदगी में बहुत मजा आता, एक कह लीजिए कि हर वक्त का उसके अंदर एक जोश है। आप एक हफ्ता किसी हाउसवाइफ को जो फराइज की सतह पे जी रही है उसको ऑब्जर्व करें, आप बोर हो जाएंगे, कोई इसकी लाइफ में चेंज ही कोई नहीं। जब देखो किचन में, जब देखो झाड़ू हाथ में, इधर से उठी तो उधर, इट्स ओके, कर रही है, अल्लाह ने उसको सब्र दिया, वो खुशी से कर रही है, अजर तो पा रही है, पर कोई डायनेमिक ही नहीं है। और इसके बरक्स आप देखिए कि अल मुजाहिदुना फी सबीलिल्लाह, हर वक्त अजम, अब इधर अब उधर प्लानिंग बनती है, दिमाग लगते हैं, अब किधर करना है, कहाँ जरूरत है, कोर्स हो रहा है, उसकी बातें ये करे। देखिए आम जिंदगी ले तो ये ना कि वो रात को उठो बच्चे के कान में दर्द थी, भागो डॉक्टर पे, इसलिए बस माँ बाप जागते रहते हैं ना रातों को, वो जी वो पाइप खराब हो गए, लीक हो गए, चलो मियाँ गाड़ी निकाल रहे हैं। कायदून के गम भी कायदून वाले ही होते हैं, ये कोई गम है? और आप मुजाहिद बने, प्लान्स रात के कहीं सुबह के कहीं, यानी जब फोन आए ना तो आपको ये फिक्र लग जाएगी अब किस तरफ के इंचार्ज का फोन आ गया। आप देखिए इतनी डायनेमिज्म है इसमें कि आपको मजा है, अब उधर का ट्रिप है, अब उधर जा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब उधर ये क्लास शुरू होनी है, उस क्लास का ये मसला, उनकी वेबसाइट नहीं बन रही, उनका ये नहीं हो रहा, उनके बुक ऑर्डर का मसला है, यानी बिग 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 गोल है आपकी जिंदगी में। इसलिए इस जिंदगी में रहकर इंसान बोर कोई नहीं होता, उसके अंदर मजा है, जोश, टीम वर्क है, प्लानिंग्स है, हलचल, भाग दौड़, गम फिक्र बामकसद। ये कि आप जैसे रोज यहां बैठते हैं, हो सकता है एक हफ्ता आप 10 दिन आते रहे बोर हो जाए और आपको कह दिया जाए कि ऐसा करते हैं कि कुछ दिन क्लास नीचे ना कर लें, तो चले जरा कल से क्लासरूम उधर बनना है तो कुछ करें, आप देखिएगा आप ये सारे टेबल उठा के नीचे ले जाएंगे जोश में, अच्छा हम निचले रूम में पढ़ेंगे और मजा आएगा ना। तो जिंदगी के अंदर हलचल होनी चाहिए, अल्लाह अकबर, लेकिन ये डिसाइड हमने करना है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, जाती तारीफ के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए करेंगे। एक बंदा वो नफ्स के तकाजे ही पूरे करने में जी रहा है, वो हर 5-6 घंटे बाद कहता क्या खाऊं, क्या है मेरे लिए माँ ने पका के रखा, और माँ से अब कौन पूछता है, माए बाहर ही बड़ी हैं, खूबसूरत स्लोगन्स के साथ इश्तेहार दिखा के बच्चों से खिलाती रही, माँ जो पका के बैठी रहे वो कहता माँ मैंने नहीं खाना, खा लिया, ये कुछ जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है? मैं कहती हूँ अगर आप अपने बच्चों को शुरू से मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनना सिखा दें, आपका आधा काम घरों का खत्म हो जाए। वो कहेंगे अम्मी यही खा लूंगा, अम्मी यही पहन लूंगा, अम्मी देखो उन्होंने भी ये किया था, अम्मी वो भी ऐसे थे, साहबा को ऐसे थे। यकीन करें साहबे कराम हीक देती हुई चर्बी खाते थे। यानी एक जंग ऐसी थी, जिहाद में मुश्किल तो आती है, सफर तो सफर ही, घर का आराम किधर, लेकिन मकसद बहुत बड़ा कि चर्बी जो कई दिन की पड़ी हुई थी उसको सूंघा तो उसमें बू आ रही है, लेकिन जंग थी कुछ है ही कोई नहीं, वो ही पकड़ के तो वो डुबो डुबो के रोटी के साथ चर्बी खा रहे। लेकिन जन्नत जो दिखती है, तो उन्होंने ऐसे टेस्ट को क्या करना। तो इसलिए अपनी जिंदगी की तरजीहात मुकर्रर करने की जरूरत है। हम सब अपने आप को पूछें